निरंकुश राजतंत्र का सामाजिक आधार वह सामंतवाद का उच्चतम चरण था या फिर पूंजीवाद का प्रथम चरण। कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि वह सामंतवाद का उच्चतम चरण था, पूंजीवाद का प्रथम चरण नहीं, क्योंकि यूरोप के अधिकांश भागों में संकट के कारण निरंकुश राज्यों का राजनीतिक तंत्र अभिजात वर्गों के पक्ष में झुका हुआ था। वास्तव में निरंकुश सम्राटों के नेतृत्व में राजनीतिक नियंत्रण की शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। यूरोपीय महाद्वीप में रोमन विधि व्यवस्था अपनाए जाने के दो पहलू थे। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, सिविल कानून के क्षेत्र में उसने पूर्ण रूप से निजी संपत्ति की अवधारणा को सुदृढ़ किया। सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में जो राज्य एवं प्रजा के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता था, रोमन विधि व्यवस्था ने सम्राट की सर्वोच्च सत्ता के निरंकुश स्वरूप को मान्यता प्रदान की। इसकी सहायता से सम्राट ने करारोपण की केंद्रीकृत व्यवस्था का विकास किया और कुलीन वर्ग की स्थानीय राजनीतिक शक्ति को कम कर दिया। जब शक्ति का यह संकेंद्रण चल रहा था, राजाओं ने शहरवासियों, विधि में पारंगत पादरियों और आवश्यकता पड़ने पर कृषक वर्गों में से अनेक व्यक्तियों एवं सामाजिक गुटों का समर्थन प्राप्त किया, किंतु उनका उद्देश्य कुलीन वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक सत्ता को, जिस पर उत्पादन की सामंती पद्धति आधारित थी, ऐसी आधारभूत चोट पहुँचाना नहीं था जिससे उसे बदला जा सके।